रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ और वक्त है कुछ खास बातें करने का। जी हाँ, लॉ से जुड़ी हुई। और हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिस्टर संजय ठाकुर। तो संजय जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में।
थैंक यू दीक्षा।
संजय जी, हर हफ्ते हम कुछ खास बात करते हैं लॉ से जुड़ी हुई, मतलब एक आम आदमी की समस्या होती है, आम आदमी से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं और क्या लीगल एक्शन उसे लेना चाहिए, क्या एक्ट्स हैं भारत के संविधान में, ये आप बताते हैं हमारे कुछ खास प्रोग्राम्स में। तो आज का क्या टॉपिक है जिसे हम लेकर आए हैं हमारे लिसनर्स के लिए?
दीक्षा, आज का जो है वो मैंने तैयार नहीं किया था, लेकिन डायरेक्टर साहब की एक खास इच्छा थी, जो मानव रचना रेडियो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई संजय, एक नया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ऑन जनरल पावर टॉनी, तो काइंडली आप उसके बारे में बताएं।
जी।
तो मैंने कहा मैं पूरा बताता क्या हूँ, मैं पूरा पूरा प्रोग्राम आप उसको पर दे देता हूँ।
जी जी।
तो बेसिकली वो इरेवोकेबल जनरल पावर टॉनी के ऊपर आया था, जिसके अंदर लोग अपनी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करते हैं।
जी।
तो साथ के साथ मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में भी आज बताऊंगा।
जी, यानी तो आज गंभीर साहब के रिक्वेस्ट पर आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मुद्दा उठाया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, अपने लिसनर्स को कुछ खास जानकारी देने वाले हैं।
जी,
तो बहुत सारी बातें आगे भी जारी रहेंगी। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संजय ठाकुर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आप भी कुछ जानना चाहें तो जरूर अपने सवाल हमें SMS या फोन कॉल के जरिए भेज सकते हैं या फिर अपने लेटर्स के थ्रू भी भेज सकते हैं। हमारा पता है रेडियो मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस, सेक्टर 43, सूरज कुंड रोड, अरावली हिल्स। आप अपने लेटर्स, अपनी परेशानियां हमें भेज सकते हैं और साथ ही साथ मैसेज या फोन कॉल के जरिए भी आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेज सकते हैं 8010781078 पर। संजय जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में आप हमें डिटेल्स देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को समझाएं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्चुअली में है क्या।
दीक्षा, एक चीज को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोई भी मूवेबल,
जी,
जिस तरह कार, स्कूटर, मशीनरी, कुछ भी,
जी जी,
इमूवेबल, फैक्ट्री, लैंड, फार्म लैंड, दुकान, मकान,
जी जी,
या फिर हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
जी जी,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि हमारी खुद की इनोवेशन हो,
जी,
या हमारा ट्रेडमार्क हो,
जी,
या हमारे पेटेंट राइट्स हो,
जी।
तो इन सबको जिस समय हम एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रांसफर करता है,
जी जी,
तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कवर होता है।
जी।
अब जिस समय मैं बात कर रहा हूँ एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर करने के लिए, तो बेसिकली उसमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इंसान मतलब एनी लिविंग पर्सन,
जी,
और जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है वो एक आम आदमी भी हो सकता है,
जी,
एक कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, और कुछ राइट्स तो इवन अनबॉर्न चिल्ड्रन के नाम पर भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं।
जी जी, यानी हम अपने किसी सगे संबंधी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने दोस्त के नाम पे, किसी भी लिविंग पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है।
कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जिसमें प्रॉपर्टी जाती है,
जी,
तो वो रजिस्टर होनी भी जरूरी है और ये सारी चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आती है।
जी बिल्कुल, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसकी जरूरत हर किसी को कहीं ना कहीं जरूर पड़ती है। बहुत सारी बातें आगे जानी है। संजय ठाकुर जी, आपके साथ बातें जारी रहेंगी, लेकिन हम बहुत सारे सवाल भी लोगों से लेंगे अगले हफ्ते, शायद हम उनको शामिल करेंगे अपने शो में। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करें तो ऐसे सवाल हमें आप भी भेज सकते हैं। हमारा पता है रेडियो मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस, सेक्टर 43, सूरज कुंड रोड, अरावली हिल्स, फरीदाबाद। आप अपने पत्र, अपने सवाल इस एड्रेस पर हमें सकते हैं या फिर आप फोन कॉल या SMS के जरिए भी पूछ सकते हैं अपने सवाल 8010781078 पर। संजय जी, बहुत सारी बातें हम आपसे जान रहे हैं, लेकिन आपने अभी बताया कि कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है और कौन लोग हैं जो ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर सकता है।
जी।
लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ ट्रांसफर किस तरीके से होता है, यानी ट्रांसफर करने का प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है।
दीक्षा, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। शायद इस चीज के बारे में हम इसको रोज मर्रा की जिंदगी के अंदर यूज करते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, किसी भी चीज को ट्रांसफर करने के बेसिकली 5 तरीके होते हैं।
जी।
पहली चीज है सेल, जिसमें आपने एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेची
जी।
दूसरी है मॉर्गेज। मॉर्गेज हम लोग आमतौर पे बहुत नॉर्मली यूज करते हैं
जी।
जिस तरह जब भी बैंक से कभी लोन लेते हैं, खास तौर पे नेशनल बैंक से, तो वो चाहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी कोई ना कोई मॉर्गेज करें
जी।
मॉर्गेज का मतलब होता है रहन रखना
जी। जी बिल्कुल
ठीक है। तीसरी चीज होती है लीज
जी।
बहुत सारे लोग जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आया है जिसके अंदर हम लोगों ने कोई ना कोई मकान या दुकान या कोई और चीज रेंट पे ली हो
जी।
तो आम तौर के ऊपर वो लीज उसको रेगुलेट करती है
जी।
ये जरूरी नहीं है कि लीज ही रेगुलेट करती है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं आमतौर पे वो लीज का करते हैं
जी, जी।
इवन जो मकान हम अपने रहने के लिए गवर्नमेंट से अलॉट करवाते हैं तो कुछ तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं
जी, जी।
और कुछ लीज पे आती है 99 ईयर्स के, तो लीज भी एक नॉर्मल ट्रांसफर की तरीका है
जी, जी।
तीसरी चीज है एक्सचेंज
जी।
अब एक्सचेंज जो है बार्टर सिस्टम हम लोगों को पता है कि पुराने जमाने में चलता था कि भैया आप मेरा गेहूं ले लो
जी।
और अपना कपड़ा मुझे दे दो
जी।
वैसे ही ट्रांसफर एक्सचेंज के तौर पे भी इसको लॉ रेकॉग्नाइज करता है
जी, जी।
फाइनली आ गया गिफ्ट। बुजुर्गों ने अपने बच्चों को दिया या बच्चों ने अपने बुजुर्गों को दिया या एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को दिया, तो गिफ्ट इज वेरी नॉर्मल
जी, जी।
तो इन पांच तरीकों से जो एक प्रॉपर्टी है दूसरे आदमी के पास ट्रांसफर हो सकती है
जी, जी।
जिसको लॉ रेकॉग्नाइज करता है
जी, जी। यानी अलग अलग तरीके हैं, आप लीज पर भी दे सकते हैं, आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, यानी अलग अलग तरीकों से आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे के नाम पर
जी।
तो बहुत सारी बातें और भी जारी हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से जुड़ी हुई। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिस्टर संजय ठाकुर, जिनसे हम जान रहे हैं कुछ खास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से जुड़ा हुआ। जी हाँ, एक आम आदमी को कहीं ना कहीं लॉ की जानकारी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसकी जरूरत हर किसी को कहीं ना कहीं जरूर पड़ती है। यानी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, आप चाहे उसे गिफ्ट करना चाहें, चाहे उसे रेंट पे देना चाहें, चाहे एक्सचेंज करना चाहें, आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ही सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी बातें और भी जारी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संजय ठाकुर जी। संजय जी, एक चीज आपसे जो बहुत जरूरी हम जानना चाहते हैं, कंडीशनल ट्रांसफर, जिसके बारे में एक आम आदमी शायद नहीं जानता, इस शब्द का या फिर इस चीज का जानकारी जो है वो व्यक्ति नहीं रखते हैं ज्यादा। तो मैं चाहूंगी आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि कंडीशनल ट्रांसफर एक्चुअली में है क्या।
दीक्षा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कंडीशनल ट्रांसफर आमतौर पे लोग यूज करते हैं
जी,
लेकिन वो ये जानते नहीं है कि कंडीशनल ट्रांसफर है क्या और कहां कहां पर वो कंडीशनल ट्रांसफर यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज ये आ जाती है कि जहां कंडीशनल ट्रांसफर की बात होती है, इसको इंडस्ट्री बिजनेस हाउसेस तो बहुत नॉर्मली यूज कर रहे हैं, लेकिन एक आम इंसान भी इसको यूज कर सकता है, उसकी जानकारी उसको नहीं है
जी।
अब कंडीशनल ट्रांसफर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा
जी।
ऐसा है कि हम लोग आजकल लोग इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं डिफरेंट बैंक्स के साथ, तो उसके अंदर बैंक्स ये कहते हैं कि साहब आप हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए और हम जो आपको पैसा तभी देंगे अगर आपके 3 साल पूरे हो जाएं
जी, जी।
एक कंडीशन
जी।
दूसरी कंडीशन वो ये लगा देते हैं कि साहब जो हाईएस्ट एनएवी होगा
जी,
हम आपको उस पे पैसा देंगे
जी।
ये दूसरी कंडीशन। तो जितने भी हम लोग इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके अंदर हमारी मनी उनको ट्रांसफर होती है, उसके बाद प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट वो हमें वापस आती है या बेस्ड ऑन एनएवी वो हमें वापस आती है
जी, जी।
तो बेसिकली दीज आर द कंडीशंस जो कि वहां पर अप्लाई होती हैं
जी, जी।
हम लोग इन चीजों को करते जरूर हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कंडीशनल ट्रांसफर्स हैं
जी, जी।
कंडीशनल ट्रांसफर्स बेसिकली दीक्षा 4 किस्म की होती है
जी।
पहली बात तो है इवेंट्स, जिस तरह मैंने आपको 2 चीजें बताई, 3 साल वाली और एनएवी वाली, दिस इज कवर्ड अंडर इवेंट्स
जी।
दूसरी चीज एक्ट। अब लेट अस से कि एक आदमी पेट्रोल पंप अलॉट करवाने किसी कंपनी के पास गया, जिस तरह IOC है, BPCL है, HPCL है
जी, जी।
वो ये कहते हैं कि साहब अगर आप अपनी जमीन एक खास एरिया में ले लें तो हम आपको पेट्रोल पंप दे सकते हैं
जी।
तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी ने एक जमीन एक जगह पर या एक्वायर की या उसके पास पड़ी थी
जी, जी।
तो वहां पर उसका वो एक्ट हो गया
जी।
और उसके बेसिस के ऊपर पेट्रोल पंप के जो राइट्स हैं
जी।
वो उस आदमी को मिले
जी।
ये कंडीशनल ट्रांसफर हो गई
जी, जी,
एक्ट की
जी।
तीसरी चीज आ जाती है विल। विल भी कंडीशनल ट्रांसफर होती है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि किस आदमी को किस प्रोपोर्शन के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टी दे
जी, बिल्कुल।
तो वो उसमें कंडीशंस लगाता है। ये तीसरा फॉर्म हो गया कंडीशनल ट्रांसफर का
जी।
और आखिरी चीज होगी ट्रस्ट
जी।
नाउ दीक्षा, ट्रस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक
जी,
जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते हैं, वेयर एज कंपनीज बिजनेस हाउसेज इसको बहुत देर से यूज कर रही हैं
जी,
ट्रस्ट एक ऐसी चीज होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक मकान पड़ा है लेट अस से शिरडी के अंदर।
जी जी।
अब आपको शिरडी के ऊपर फेथ भी है लेकिन आप ये चाहते हैं कि उस मकान का जो फायदा है वो आपके बच्चों को भी मिले।
जी जी।
तो ऐसा है कि आप एक ट्रस्ट बना लेंगे जिसके अंदर ट्रस्टीज अपॉइंट करेंगे, जिसके अंदर आप ये कंडीशन रखेंगे कि एक तिहाई हिस्सा आपके एक बच्चे को जाए
जी,
एक तिहाई हिस्सा आपके दूसरे बच्चे को जाए, लेकिन तीसरा आप ये भी चाहते हैं कि एक तिहाई हिस्सा उस श्राइन को जाए जो शिरडी की है।
जी।
तो ये चौथा एग्जांपल हो गया कंडीशनल ट्रांसफर का
जी,
जो कि आप ट्रस्ट बनाकर एब्सोल्युटली उसका फायदा ले सकते हैं।
जी, यानी आप अगर दान पुण्य करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को जो देना चाहते हैं वो भी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन एक ट्रस्ट के साथ मिलकर ही उसको दिया जा सकता है।
मैं दीक्षा इसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, शायद आप लोगों को जानकर हैरानी होगी। एक बहुत बड़ी फैमिली
जी,
जिसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट बना रखी है अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए, वो है हमदर्द
जी,
जिसका हम लोग रूह अफजा शायद हर रोज पीते हैं।
जी जी बिल्कुल।
लेकिन हम उसको कंपनी समझते हैं, लेकिन बेसिकली दैट इज अ
ट्रस्ट है।
जी
जी जी, जी बिल्कुल। यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जनरल नॉलेज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। संजय जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बायर और सेलर यानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो दो पहलू होते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सबसे ज्यादा रोल जो है बायर और सेलर का आमतौर पर देखा गया है, हिंदुस्तान जैसे देश की अगर बात की जाए तो। वहां पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बायर और सेलर इनके राइट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं?
दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं सेलर की।
जी।
यहाँ पर मैं जो पॉइंट लेना चाहूंगा, यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई चीज बड़ी
जी
परचेज करते हैं या बेचते हैं तो वहाँ पर एक प्रोफेशनल जैसे कि लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब की हेल्प जरूर लेनी चाहिए।
जी जी।
सेलर की अगर मैं लायबिलिटी की बात करूँ तो सेलर को ये चाहिए कि इन केस अगर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी आदमी को बेच रहा है तो उसमें कुछ मटेरियल डिफेक्ट है
जी,
तो उसको चाहिए कि परचेजर को वो बताए।
जी।
दूसरी चीज, वो अपना जो टाइटल है उसकी फोटोकॉपी अपने परचेजर को जरूर दे ताकि वो उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सके, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी गलतियां जो हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एरर, प्रॉपर्टी के अंदर हो जाती हैं, क्योंकि आखिरकार जो इसके डीड्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो भी इंसान ही बनाते
जी,
हैं।
जी बिल्कुल।
मैं एक आपको बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी ने 20 बिस्वा जमीन खरीदी
जी जी,
लेकिन जिस समय लिखी गई वो 20 बिस्वंसी हो गई
जी जी,
तो इसका मतलब ये है कि उस बेचारे ने तो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी खरीदी लेकिन जो उसके नाम पर चढ़ी वो बहुत छोटी सी थी।
जी जी।
पहली बात। दूसरी बात, आप जिस समय भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टी के तो डॉक्यूमेंट्स वैसे भी बहुत चेक करने जरूरी होते हैं, क्योंकि क्या वो प्रॉपर्टी किसी चार्ज पे तो नहीं चढ़ी हुई
जी जी,
कहीं मॉर्गेज तो नहीं है
जी,
ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक परचेजर थ्रू अ कंसल्टेंट जान सकता है
जी जी।
और जिस तरह मैं सेलर की लायबिलिटी बता रहा था कि सेलर को चाहिए कि वो अपने टाइटल डीड्स दे ताकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन परचेजर उसमें से ले सके। जितने भी क्वेश्चन परचेजर पूछता है ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके वो जवाब दे ताकि परचेजर को उस प्रॉपर्टी के बारे में अनुमान लगाने में पूरा पूरा फायदा मिले। हम एक वर्ड यूज करते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में जिसे कहते हैं ड्यू डिलीजेंस।
जी जी।
ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी की हर एक छोटे से छोटे नुक्ते को हम लोग ढूंढते हैं
जी,
और उसके हिसाब से बताते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी खरीदने लायक है
या नहीं है।
और उसके बाद जिस समय वो अपना बयाना ले तो उस समय एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना और वो एग्रीमेंट डिलीवर करना
जी,
ये एक सेलर की लायबिलिटी बनती है।
जी जी बिल्कुल।
वहीं पर जहां पर बायर की लायबिलिटी की बात करें तो जिस समय एग्रीमेंट वो साइन करता है इनिशियल, जिस समय वो पहला पैसा देता है
जी,
तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट ही शुड पे द मनी, वो सेलर की सॉरी बायर की टोटल लायबिलिटी आती है।
जी जी बिल्कुल।
उसके बाद राइट्स की बात करें तो सेलर का जो राइट है वो ये है कि वो अपना पूरा पैसा दे
जी,
बायर का ये राइट है कि जिस समय ये पूरा पैसा दे उस समय सेलर उसके साथ जाकर रजिस्ट्री की जितनी भी प्रक्रिया है वो पूरी करवाए।
जी बिल्कुल। यानी काफी कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं बायर और सेलर के जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आपने कहा कि भाई ह्यूमन बीइंग है, गलतियां हो सकती हैं, तो वो गलतियों से थोड़ा सा सावधान रहे और राइट्स एंड लायबिलिटीज को जरूर समझें। बातें आगे भी जारी रहेंगी। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संजय ठाकुर जी, जिनसे हम जान रहे हैं कुछ खास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। संजय जी, अब आपने शुरुआत में शो के कहा था जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, तो मैं फाइनली अब आपसे जानना चाहती हूँ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आप हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं।
सबसे पहले तो जेना पावर टोनी के बारे में। जेना पावर टोनी एक इंसान दूसरे इंसान को राइट देता है कि वो उस प्रॉपर्टी के रेफरेंस के अंदर कोई भी काम जो उस पावर टोनी के अंदर दे रखा है, जो भी कंडीशंस दे रखी हैं, उसका पूरा पूरा हक लेकर उस चीज के ऊपर वो एक्ट करे। जिस जजमेंट के बारे में गंभीर साहब ने बात की थी, वो बेसिकली जजमेंट आई थी उन प्रॉपर्टीज के नाम पे जो इरेवोकेबल जनरल पावर टोनी या सिर्फ सेल्स एग्रीमेंट के ऊपर या विल के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच ने अपना डिसीजन दिया
जी।
और इस टाइप की ट्रांसफर्स को उन लोगों ने वैध नहीं ठहराया
जी।
वैध का मतलब कि ये जो ट्रांसफर्स है इसके अंदर अगर कोई आदमी कल अपना हक जमाता है तो उसका हक वो माना नहीं जाएगा
जी।
दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा दीक्षा। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तीन चीजों को खास तौर के ऊपर तवज्जो दी है। यहाँ पर उन प्रॉपर्टीज की बात हो रही है जिस प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टीज तो लोगों के नाम पे ट्रांसफर हो जाती हैं, वो उसका पूरा बेनिफिट भी उठाते हैं
जी,
ठीक है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवाते
जी जी,
और कागजों में नहीं चढ़वाते हैं कि ये प्रॉपर्टी का असली मालिकाना हक किसका है
जी जी।
इसके अंदर सबसे पहले बात करता हूँ जीपीए की ही
जी।
यह है इरेवोकेबल जीपीए जनरल पावर टोनी
जी,
जिसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को अपने इरेवोकेबल जो वापस ना ली जा सके
जी जी,
अपनी जनरल पावर टोनी देता है, जिसके अंदर वो उसको सारे हक देता है कि वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करे, वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाए, वो उस प्रॉपर्टी को चाहे बेचे
जी,
अगर कोई टैक्स है तो वो भी वो भरे, अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लिटिगेशन कल की डेट में होती है तो उसके अंदर अपना वकील भी अपॉइंट करे, अगर उसको कहीं पर साइन करना है तो वो साइन भी करे, अगर उसको लड़ना है तो वो उसके ऊपर लड़े
भी सके जी जी।
तो इरेवोकेबल पावर टोनी, दूसरी चीज जो उन्होंने उठाई वो है सेल्स एग्रीमेंट
जी।
सेल्स एग्रीमेंट में क्या हुआ कि जिस समय आपने अपना बयाना दिया, आपने एक एग्रीमेंट अपने बायर और सेलर के बीच में हुआ
जी,
और उसके बाद जस्ट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स आपने पैसे जो हैं बाकी के जो बकाया थे वो दे दिए
जी,
ठीक है, उसको डॉक्यूमेंटेशन भी उसकी कर ली, लेकिन आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया
जी।
तीसरी चीज विल आपने किसी ऐसे इंसान के नाम पे बनाई जो आपका क्लोज रिलेटिव नहीं है
जी जी,
और आपने उसको दूसरे के नाम पर विल के बेसिस के ऊपर प्रॉपर्टी दे दी
जी।
अब इन तीनों चीजों के अंदर अगर आप दीक्षा देखें कि हम लोगों ने कहीं पर भी इनकम टैक्स पे नहीं किया
जी जी,
कैपिटल गेन्स जो है वो नहीं पे किया
जी,
वेल्थ टैक्स जो एक्युमुलेट हुआ वो हम बिल्कुल ही हाइड कर गए
बिल्कुल,
हम लोगों ने उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी
जी,
जो कि सरकार का हक बनता है, ना ही हम लोगों ने उसके ऊपर रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फी दी
जी जी, यानी काफी कुछ छुपा गए
बिल्कुल। अब अगर देखा जाए तो उससे हम सबको सरकार के साथ साथ नुकसान क्या है, इससे सबसे पहले जिस चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता है वो है काला पैसा, ब्लैक मनी
जी,
जो हम सब जानते हैं। दूसरी चीज बेनामी प्रॉपर्टीज
जी,
और फाइनली करप्शन तो बढ़ती बढ़ती है
जी जी,
और आजकल तो वैसे भी करप्शन के ऊपर बहुत हो हल्ला है
जी।
और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, इस टाइप की प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर के ऊपर क्योंकि आपके टाइटल्स क्लियर नहीं होते हैं तो बिलीव मी लिटिगेशंस जो हैं वो इसी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं प्रॉपर्टी के रेफरेंस में
जी जी। यानी काफी कुछ सोच समझ के चलना चाहिए, चीजें जो आपने जैसा बताया है वो सब नहीं छुपानी चाहिए, उनको हाइड नहीं करना चाहिए
ऑफ कोर्स। और इसीलिए दीक्षा इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाते हुए ये कहा कोई भी प्रॉपर्टी इस नाम से कोई आदमी एंजॉय करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान की कोई भी कोर्ट या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज नहीं मानेंगी
जी। तो संजय जी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से जुड़ी हुई, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी हुई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू दीक्षा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लिसनर्स
जी। हमने बात करी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, अगर आप भी कुछ जानना चाहें तो अपने सवाल आप हमें फोन या SMS के जरिए भेज सकते हैं 8010781078 पर, या फिर आप अपने लेटर्स के जरिए भी पूछ सकते हैं अपने सवाल। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस, सेक्टर 43, अरावली हिल, सूरज कुंड रोड, फरीदाबाद। फिलहाल दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।